एहेस्केल अध्याय 43। अब अध्याय 43 में पद एक, फिर वो मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्व मुखी था। ये आपके नक्शे का निचला भाग है। एहेस्केल अध्याय 43 पद दो, तब इसराइल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की घरघराहट सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। आपको ध्यान होगा कि एहेस्केल ने पहले एक दर्शन देखा था कि परमेश्वर की महिमा मंदिर में से उठकर पूर्वी द्वार से बाहर निकलकर स्वर्ग में चढ़ गई थी। अब यहां उसकी महिमा फिर से पूर्व द्वार से ही इस नए मंदिर में आ रही है। उसकी वाणी बहुत से जल की घरघराहट सी हुई। प्रकाशित वाक्य में भी यूहन्ना यीशु की महिमा का वर्णन इन्हीं शब्दों में करता है। मेरे विचार में एहेस्केल का ये ध्वनि दर्शन मसीह यीशु के आगमन का है। लूका अध्याय 21 पद 27, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे और वो अपना पांव जैतून के पर्वत पर रखेगा और वो दो भाग होकर वहां एक घाटी का निर्माण करेगा। आपको ध्यान होगा धर्मशास्त्र में लिखा है कि यीशु अपने शिष्यों के साथ जैतून के पर्वत पर बैतनिया तक गया और तब ऊपर उठ गया और बादलों ने उसे घेर लिया। उस समय दो मनुष्य चमकते हुए वस्त्र पहने उनसे बोले, प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 11, हे गलील के पुरुषों, तुम खड़े स्वर की ओर देख रहे हो, यही यीशु उसी रीति से फिर आएगा। अतः वो फिर इसी महिमा में जैतून पर्वत पर उतरेगा। उस समय पृथ्वी पर महा प्रलयंकारी परिवर्तन होगा और इस प्रकार उस समय ये पर्वत दो भाग हो जाएगा तथा परमेश्वर के इस मंदिर से एक नदी निकलेगी जो बहती हुई मृत सागर में जा गिरेगी और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई, अर्थात यीशु के तेज से। जब वो आएगा तब स्वर्ग दूत उसके चारों ओर होंगे, अर्थात करूब। बाइबल के अनुसार कलीसिया भी उसके साथ होगी। बादलों से अभिप्राय है जन समूह या स्वर्ग दूतों का समूह। पौलुस कुलुसियों की कलीसिया को लिखता है, कुलुसियों अध्याय 3 पद 4, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय के अनुसार मनुष्य का पुत्र स्वर्ग दूतों के साथ देखा जाएगा जब वो न्याय करने को आएगा। अतः मसीह स्वर्गीय जन समूह के साथ आएगा कि पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करें। एहेस्केल अध्याय 43 पद 3 से लेकर 9 तक। और ये दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर के नाश करने को आते समय देखा था, और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तीर पर देखा था और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्व मुखी था भवन में आ गया। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया और यहोवा का तेज भवन में भरा था। तब मैंने एक जन का शब्द सुना जो भवन में से मुझसे बोल रहा था, और वो पुरुष मेरे पास खड़ा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यहोवा की ये वाणी है, ये तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पांव रखने की जगह है, जहां मैं इसराइल के बीच सदा वास किए रहूं। और ना तो इसराइल का घराना और ना उसके राजा अपने व्यभिचार से वो अपना ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं की लोथों के द्वारा मेरे पवित्र नाम फिर अशुद्ध ठहराएंगे। वे अपनी डेवड़ी मेरी डेवड़ी के पास और अपने द्वार के खंभे मेरे द्वार के खंभों के निकट बनाते थे, और मेरे और उनके बीच केवल भीत ही थी, और उन्होंने अपने घिनौने कामों से मेरा पवित्र नाम अशुद्ध ठहराया था, इसलिए मैंने कोप करके उन्हें नाश किया। अब वे अपना व्यभिचार और अपने राजाओं की लोथें मेरे सम्मुख से दूर कर दें, तब मैं उनके बीच सदा वास किया रहूंगा। ये प्रभु के आगमन और मनुष्यों के बीच उसके राज्य की घोषणा है, और एहेस्केल को ये संदेश इसराइल के घराने को सुनाना है। एहेस्केल अध्याय 43 पद 10। हे मनुष्य के संतान, तू इसराइल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा कि वे अपने अधर्म के कामों से लज्जित होकर उस नमूने को मापे। पद 13 में वो वेदी का नाप देता है, केंद्र में वेदी बनाई गई है और वेदी का आकार बहुत ही आकर्षक है, इसके चारों कोने में सींग लगे हैं। पद 19 से अध्याय के अंत तक बलिदानों के चढ़ाने की विधि है। याजक बलिदानों, पाप बलि, होम बलि, मेल बलि आदि अर्पित करता है। अब यहां एक समस्या है, प्रभु के राज्य में पाप बलि की क्या आवश्यकता है? पुराने नियम में पाप बलि थी क्योंकि पापों का धोया जाना आवश्यक था, परंतु वो केवल यीशु के आने तक की बात थी, जब हमारे पाप सदा के लिए धो दिए गए। इब्रानियों की पत्री में कहा गया है कि यीशु ने सदा के लिए पाप बलि को पूरा कर दिया था। पुराने नियम की पाप बलि तो मसीह की बलि की प्रतिछाया थी, तब क्यों ऐसे प्रावधान किया गया है? इसके अनेक वर्णन हैं। कुछ का कहना है कि ये केवल प्रतीकात्मक क्रिया है जो वास्तव में होगी नहीं। मैं ये नहीं मानता, क्योंकि लिखा है कि बलिदान चढ़ाए जाएंगे। आइए हम पुराने नियम के बलिदानों पर ध्यान दें। वे पाप का निवारण करने में सक्षम नहीं थे। परमेश्वर ने कहा था कि बलिदान केवल कोफर होगा, अर्थात पाप को ढांपेगा, उनका निवारण नहीं करेगा। परमेश्वर ने कहा था कि ये बलिदान केवल आवरण मात्र है। इब्रानियों का लेखक कहता है कि बछड़ों और बकरों के लहू से पाप मुक्ति संभव नहीं है। वे केवल एक सिद्ध बलिदान की ओर संकेत करते थे जो यीशु ने दिया। अतः मेरे विचार में ये बलिदान जो प्रभु के राज में चढ़ाए जाएंगे, वे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के स्मरण चिन्ह होंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की इस युग में भी याद दिलाएंगे। यीशु ने अपने शिष्यों को रोटी दी और कहा, ये मेरी देह है जो तोड़ी जाएगी, और कटोरा लेकर कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, मैं जब तक आ नहीं जाता तुम यही किया करो, जिसे हम आज तक उसके बलिदान के स्मरण में करते हैं, ना कि पापों के निवारण हेतु। ठीक इसी प्रकार प्रभु के राज्य में भी बलिदान एक स्मारक होंगे, ना कि पाप निवारक। वे यीशु की क्रूस पर मृत्यु की याद दिलाएंगे। मेरी समझ में तो उस युग में बलिदान चढ़ाने का यही कारण है।